ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 112। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान की सप्त भूमिका है, इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस भूमिका में जिज्ञासु पहुंचता है उसका लक्षण क्या है और ये सप्त भूमिकाएं क्या है, कैसे प्राप्त होती है, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सप्त भूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती है और जिस प्रकार इनसे ज्ञान प्राप्त होता है, सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसकी दृढ़ सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है, जैसे ज्ञानी की होती है। परंतु बालक में संस्कार रहता है, इससे संस्कार की सत्यता आगे होती है। जैसे बीज में अंकुर होता है, उसे आगे चलकर वृक्ष होता है, वैसे ही बालक की भावी होती है, पर ज्ञानी का भावी नहीं होती है। जैसे दग्ध बीज में अंकुर नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी की भावी नहीं होती, क्योंकि वह संसार से सुषुप्त है और स्वरूप में स्थित नहीं है। जब बालक को बाहर निकलकर कुछ काल व्यतीत होता है तब उसकी वह दृढ़ जड़ता निवृत्त हो जाती है और सुषुप्ति रहती है। कुछ काल के उपरांत सुषुप्ति भी लय हो जाती है और चेतनता होती है। तब वह जानता है कि यह मैं हूँ, ये मेरे माता पिता है। तब कुल वाले उसको सिखाते हैं कि यह मीठा है, यह कड़वा है, यह तेरी माता है, यह तेरा पिता है, यह तेरा कुल है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे नरक पाता है, इस प्रकार यज्ञ होता है और इस प्रकार तप होता है और इस प्रकार दान करते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कुल के उपदेश और शास्त्र के भय से वह धर्म में निरत होता है और पाप का त्याग करता है। ऐसा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला पुरुष धर्मात्मा कहलाता है। वे धर्मात्मा पुरुष भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति की ओर और दूसरा निवृत्ति की ओर। जो प्रवृत्ति की ओर है वह पुण्य कर्मों से स्वर्ग के फल को भोगता है और मोक्ष को उत्तम नहीं जानता, इससे संसार में जल के तरण की तरह भ्रमता रहता है। कभी चिरकाल में वह इस संसार चक्र से छुटकारा पाता है। जो निवृत्ति की ओर होता है उसको विषय भोग से वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि यह संसार मिथ्या है, इससे तरू और उस पद को प्राप्त हूं जहां क्षय और अतिशय न हो। यह संसार सर्वदा चल रूप और दुखदायी है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है और जो पशु धर्मा मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ के न जानने वाले को पशु धर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर अशुभ को ग्रहण करते हैं और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी और दूसरे निवृत्ति मार्गी। जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना और यह कामना करके फल के निमित्त यज्ञादिक शुभ कर्म करना कि स्वर्ग धन पुत्रादिक मुझे प्राप्त हो प्रवृत्ति मार्ग है। ऐसे कामना रखकर शुभ कर्म करके जो इस संसार समुद्र में बहते हैं वे चिरकाल में निवृत्ति की ओर भी जाते हैं और तब वे स्वरूप को जान पाते हैं। निवृत्ति मार्गी वह है जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूं। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा, यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है, यह भोग तो सर्प है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है, शम दम आदि जो ज्ञान के साधन है उनका आचरण करता है, शुभ अशुभ देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता और सच शास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों से उपरत होती है। तब वह तीर्थ ठाकुर द्वारों और शुभ स्थानों को पूछता है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रखकर दया सत्य कोमलता धारण कर विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है जिसमें सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो, इससे भिन्न किसी को कुछ नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदि के सुखों की कामना नहीं करता, केवल आत्मपरायण होता है, संतों और शास्त्रों की दृढ़ भक्ति करता है और उनके अर्थों में मन लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता। जैसे करदम सुम सर्वदा धन का चिंतन करता है, वैसे ही वह सदा आत्मा का चिंतन करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पाप रूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है। संत जन सच शास्त्र और धर्म रूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसका लक्षण है सच शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार कर उनमें दृढ़ भावना करना। उस विचार का कवच जो गले में डालता है उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, वह विचार रूपी कवच पहनने वाले को नहीं लगती। हे रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी सर्प में तृष्णा रूपी विष है, उससे वह मूर्ख को मारता है। विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों का नाश कर डालता है, सब ओर से उदासीन रहता है और दुर्जनों की संगति को बल करके त्यागता है। जैसे गधा तृण को त्यागता है वैसे ही वह मूर्ख की संगति को त्यागता है। उसमें सब इच्छाओं का भी त्याग होता है, परंतु एक यह इच्छा रहती है कि दया सब पर करता है और संतोषवान रहता है। उसके निषिद्ध दोष स्वाभाविक रूप से जाते रहते हैं। दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभावतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प केंचुल को त्याग कर शोभायमान होता है, वैसे ही विचारवान पुरुष इंद्रियों के विषयों को त्याग कर शोभा पाता है। जो उसको क्रोध भी आता है तो क्षण मात्र रहता है, हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। वह खाना पीना लेना देना आदि कर्म विचार पूर्वक करता है और सर्वदा शुद्ध मार्ग में विचरता है। संतजनों का संग कर और सत्शास्त्रों का अर्थ विचार कर बोध को बढ़ाता और तीर्थों के स्नान से काल व्यतीत करता है। हे रामचंद्र जी, यह दूसरी भूमिका है। जब तीसरी भूमिका आती है तब श्रुति, वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र के अर्थ हृदय में स्थित होते हैं। और जैसे कमल पर भंवरे आकर स्थित होते हैं, वैसे ही उस पुरुष के हृदय में शुभ गुण आकर स्थित होते हैं। तब उसे फूलों की शैया सुखदाई नहीं लगती, वन की कंदरा सुखदाई लगती है। निदान उसका वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। वह तालाबों, बावलियों और नदियों में स्नान करके शुभ स्थानों में रहता है, पत्थर की शिला पर शयन करता है, देह को तप से क्षीण करता है, धारणा से चित्त को किसी स्थान में नहीं लगाता, आत्मभावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा निवृत्त होता है, भोगों को अंतवत विचार कर अर्थात ये बने नहीं रहते यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त, मांस, मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण किनाई तुच्छ जानकर त्याग देता है। जैसे विष्ठा संयुक्त तृण को पशु त्यागता है, वैसे ही देह के अहंकार को वह त्यागता है और कंदराओं में विचर कर फल फूलों का आहार करता है, संतजनों के टहल करके आयु बिताता है और सदा असंग रहता है। यह तीसरी भूमिका है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान का यह साधन है कि ब्रह्म विद्या को विचार करके उसके अर्थ की बारंबार भावना करे और पुण्य क्रियाओं का आचरण करे। इससे भिन्न ज्ञान का कोई साधन नहीं। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को ऐसी भावना होती है, उसको यदि नाना प्रकार के सुगंध, अगर, चंदन, चोये आदि और अप्सरा अनिच्छित प्राप्त हो तो उसका निरादर करता है, और जो स्त्री को देखता है तो माता समान जानता है, पराये धन को पत्थर के बट्टे समान देखकर वांछा नहीं करता और सब प्राणियों पर दया करता है। जैसे अपने सुख को प्रसन्न करने वाला है और दुख को अनिष्ट जानता है, वैसे ही और को भी अपने सदृश जानकर सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता। इस प्रकार वह पुण्य कर्म करता रहता है। सत शास्त्रों के अर्थ का अभ्यास करता है और सर्वदा असंग रहता है। असंग भी दो प्रकार का है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, संग असंग का लक्षण क्या है, इनका भेद समझाकर आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंग दो प्रकार का है, एक समान और दूसरा विशेष। उनका लक्षण सुनो। समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूं, न मुझे कोई देता है, सब ईश्वर की आज्ञा से होता है। जिसको धन देने की इच्छा होती है उसको वह धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। समान असंग वाला जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर अर्पण करता है और अपना अभिमान कुछ नहीं करता। कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस प्रकार निराभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरता है। जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संपदा आपदा रूप है, संयोग वियोग रूप है, और जितने पदार्थ है वे सन्निपात रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं। इससे सबको वह नाश रूप जानता है। यह संयोग वियोग को दुखदायी जानता है, पर स्त्री को विष की बेली समान रस से रहित जानता है और सब पदार्थों को परिणामी जानकर किसी की इच्छा नहीं करता। संपूर्ण विश्व का जो ईश्वर है उसको जिसको सुख देना है उसको वह सुख देता है और जिसको दुख देना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं, करने कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूं, न मैं भुगता हूं और न मैं वक्ता हूं, सब ईश्वर की सत्ता से होता है। ऐसे निराभिमान होकर वह पुण्य कर्म करता है। यह समान असंग है। उसके वचन सुनने से श्रवण को अमृत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संतों को मिलने और तीसरी भूमिका की प्राप्ति से जिसकी बुद्धि बढ़ी है और जो निराभिमान है उसके उपदेश में अनुभव से तब तक अभ्यास करे जब तक हाथ पर रखे आंवले की नाई आत्मा का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो। विशेष असंग वाला कहता है कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं, केवल आकाश रूप आत्मा हूं, न मुझ में करना है न कराना है, न कोई और है न मेरा है, केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूं। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश न पृथ्वी, न मैं न मेरे को देखता है। वह निर्वास अज अविनाशी सब शब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो प्रस्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा देख भी पड़ती है तो भी उसमें हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। जैसे जल में कमल दिखता है परंतु जल से ऊपर ही रहता है, वैसे ही वह कर्म करता देख पड़ने पर भी असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि यह हो और यह न हो, क्योंकि उसको संसार का अभाव निश्चय हुआ है और वह सब कलनाओं से रहित है। उसको आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। कार्य करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ हानि नहीं होती। वह सर्वदा असंग है और संसार में कभी नहीं डूबता, क्योंकि वह तो संसार समुद्र से पार हुआ है। उसने अनात्मा में आत्मभावना त्यागी है, अहम भाव का त्याग किया है। इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौन रूप है। उसके लेखे धन पत्थर के समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहता है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।